ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभिस्संस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब परिचित हैं कि हम हर शनिवार को कृष्ण की जो लीला चर्चा है वो सुनते हैं अलग अलग भक्तों के द्वारा। जो श्रील प्रभुपाद ने अपना जो ग्रंथ है कृष्ण बुक में वर्णित किया है, तो ये इस उपलक्ष्य में ये चर्चा हो रही है कि अभी बहुत ही जल्द जन्माष्टमी का आगमन होने वाला है। तो सारे जो भक्त हैं उनके जीवन में कई सारे आनंददायक क्षण और फेस्टिवल्स होते हैं, और उनमें से जो सबसे आनंद देने वाला, बच्चे से लेकर बूढ़ों को भी आनंद प्रदान करने वाला क्या है? जन्माष्टमी फेस्टिवल है। तो हर एक भक्त तैयारी करता है कि किस प्रकार से मैं जन्माष्टमी को अप्रोच करूं। तो हम सब लोग जैसे जैसे जन्माष्टमी नजदीक आती है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार से तैयारियां करने में लगे रहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि दो प्रकार की तैयारियां हैं, एक है बाहरी तैयारी जन्माष्टमी की और दूसरा है आंतरिक तैयारी। तो बाहरी तैयारी सब लोग मग्न रहते हैं बाहरी तैयारी करने में, चाहे पंडाल लगाना है, बहुत सारी बड़ी बड़ी अरेंजमेंट्स करनी है। तो लेकिन तो ये सब क्यों है? बाहरी तैयारी का उद्देश्य भी कृष्ण को प्रसन्न करना है या कृष्ण को रिसीव करना है। कृष्ण को क्या करना है? रिसीव करना है। तो उसी प्रकार से ये तो बाहरी तैयारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कई भक्त तो सोचते रहते हैं कि जन्माष्टमी आ रही, कपड़े खरीदने होंगे, हाँ नई साड़ी चाहिए, धोती कुर्ता चाहिए, नई नई चीजें हम सोचते हैं जन्माष्टमी के लिए। लेकिन देखा जाए हम अपने बारे में अधिक सोच रहे हैं। जन्माष्टमी नजदीक आ रही है तो हम किसके बारे में कम सोचते हैं? कृष्ण के बारे में। तो बाहरी तैयारी में भी हम अपने आप को केंद्र बिंदु बनाते हैं, लेकिन एक भक्त को सदैव कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। तो बाहरी तैयारी के अलावा आंतरिक तैयारी है अपने हृदय को तैयार करना। किसको तैयार करना? हृदय को तैयार करना कृष्ण को स्वीकार करने के लिए। और जन्माष्टमी का मतलब है कि कृष्ण उस दिन अवतरित होते हैं, इस जगत में प्रकट होते हैं, मतलब कृष्ण आने वाले हैं, और देखा जाता है कि आप किस प्रकार से उनका स्वागत करते हो, किस प्रकार से उनको स्वीकारते हो। तो जो दूसरी तैयारी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है कि हम अपने हृदय को इस प्रकार से तैयार करें कि कृष्ण हमें तीव्रता से या तुरंत स्वीकार कर सके, क्योंकि बाहरी तैयारी ज्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, सबसे अधिक तैयारी मायने रखती है आंतरिक अपने हृदय की जो तैयारी है। तो इसलिए हृदय को किस प्रकार से हमें तैयार करना चाहिए कृष्ण का स्वागत करने के लिए, वो हमें शास्त्र सिखाता है, साधु सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, आचार्य गण सिखाते हैं, और हमें उसको सीखकर अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब कृष्ण विदुर के घर गए तो उन्होंने बाहरी तैयारी को ज्यादा देखा नहीं कि विदुर के घर में कितना बीएचकी का फ्लैट है उनका, मैं जाऊंगा तो मेरे लिए अलग से कमरा होगा कि नहीं होगा वहां, ऐसे सोचा कृष्ण ने नहीं। वहां दुर्योधन के यहाँ तो बड़ा महल था, इतने सारे रहने के लिए सुविधा थी, खाने की सुविधा थी, वो बाहरी अरेंजमेंट हो सकती है, लेकिन वहां विदुर और विदुरानी जो विदुर की पत्नी है, उन्होंने अपने हृदय को तैयार किया था किसको स्वीकार करने के लिए, किसको स्वीकार करने के लिए, कृष्ण को। तो इसलिए शबरी को भी हम देखें, भगवान राम का वो वेलकम करने के लिए, वो भी जैसे जन्माष्टमी मतलब कृष्ण आने वाले हैं, उसी प्रकार से शबरी के जीवन में भी एक दिन कृष्ण का आगमन होने वाला था और वो उस तैयारी में लगे थे। वो दोनों प्रकार की तैयारी एक प्रकार से कर रहे थे। और शबरी रोज अपने कुटिया के बाहर गोबर का लेप लगाते थे, रंगोली बनाते थे, और रोज जाकर बेर तोड़ के लाते थे और वही बेर उनको अर्पित करना चाहते थे भगवान श्री राम को, जो सबसे अधिक मधुर हो, सबसे अधिक स्वीट हो। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम आते हैं और उनकी जो सेवा है उसको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मैं अपने हृदय को तैयार कर रहा हूँ इतने लंबे समय से कृष्ण का आगमन होने वाला है उनको स्वीकार करने के लिए। इवन हम देखते हैं पिछले सैटरडे आपने सुना होगा भगवान के अवतरण के बारे में, कि भगवान जेल में प्रकट होते हैं। किसके लिए जेल में प्रकट होते हैं? वसुदेव और देवकी के लिए। उनके पास बाहरी कुछ अरेंजमेंट नहीं थी, हाँ, लेकिन उनका हृदय इतना अधिक तैयार था कृष्ण के स्वागत के लिए कि कृष्ण ने कुछ नहीं देखी बाहरी स्थिति, और कृष्ण प्रकट होते हैं एक सर्वसाधारण जेल में केवल वसुदेव और देवकी को आनंद प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार से शास्त्र हमें सिखाते हैं कि वास्तव में जैसे जैसे जन्माष्टमी नजदीक आती है वैसे वैसे एक भक्त को इन दोनों तैयारी में लगना चाहिए, और जो आंतरिक तैयारी है अपने हृदय को तैयार करने के लिए उसको बहुत तत्पर होना चाहिए। तो इससे हम सीखते हैं कि कृष्ण हमारी सेवा की जो भावना है उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए कृष्ण को कहा जाता है भावग्राही जनार्दन। क्या कहा जाता है? भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव को स्वीकार करते हैं और जिसके द्वारा वो एक भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां। लेकिन हमारी भावना क्या है? हमारे अंदर कृष्ण के प्रति कोई भावना नहीं है, हमारे अंदर केवल भौतिक भोग करने की भावना है। भौतिक जगत को उपभोग करना यह हमारी महत्वपूर्ण भावना या महत्वपूर्ण ध्येय है, और हम इस भौतिक संसार के अलग अलग चीजों के प्रति, व्यक्ति स्थान आदि के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो गए हैं, और जिसके कारण कृष्ण की सेवा करने की भावना हमारे हृदय से खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितना हम भगवान के अलावा आसक्त होंगे भौतिक वस्तुओं में, उतनी ही कृष्ण की सेवा करने की भावना हमारे हृदय से खत्म हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि जैसे कि कोई जलाशय है, पानी का सरोवर है छोटा सा, और उसके किनारे बहुत सारे पेड़ उग आते हैं, तो वो सारे पेड़ अपने जड़ से सारा जल धीरे धीरे खींच लेते हैं और वो जलाशय खाली हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उपभोग करने की जो भावना है, वो उन वृक्षों के समान है। जो हमारे हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, उसको क्या कर रहा है, हटा रहा है या निकाल रहा है, जिसके कारण हमारा जो हृदय है एक खाली जलाशय के समान होते जा रहा है और कृष्ण की सेवा की जो भावना है पूर्ण रूप से खत्म होती है। तो रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि हम सबके अंदर भगवान की सेवा करने की भावना है और वो भावना बहुत अधिक तीव्र है, लेकिन उस भावना को हमें जागृत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जागृत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक केला हम लेते हैं तो केले के जो छिलका निकालने से आपको केला मिलेगा जिसको आप खा सकते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम या सेवा की भावना हम सबके हृदय में है, लेकिन अभी वो ये भौतिक भोग रूपी छिलके से ढकी हुई है। हाँ, उसको उतारना पड़ेगा। और उसको कैसे उतारते हैं? भक्तों के संग में आकर हरि नाम का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। चैतन्य महाप्रभु आते हैं नवद्वीप मायापुर में और रोज सुबह अपने भक्तों को लेकर नगर संकीर्तन के लिए निकलते हैं, और निकलते हुए क्या कहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले। हाँ, कि अरे जीवो जाग जाओ, चैतन्य महाप्रभु सबको जगा रहे हैं। कब तक माया रूपी पिशाचिनी के गोद में सोते रहोगे? अभी सूर्य का उदय हो गया है, जगो और कृष्ण की सेवा में लगो और अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको जानने का प्रयास करो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हम सबको जगाते हैं, कृष्ण की भावना को जगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया, उनके जो सन्यासी गुरु थे केशव भारती, उन्होंने उनका नाम रखा श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य इसलिए रखा क्योंकि सबकी जो चेतना है वो कृष्ण से रहित हो गई है, चेतना रहित, चेतना से शून्य हो गए लोग। तो उन्होंने देखा कि ये स्वयं कृष्ण है और सारे जीवों की चेतना में कृष्ण का उदय कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा, श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए जोर से, और जोर से, श्री कृष्ण चैतन्य, जो सबके हृदय में कृष्ण की चेतना को जगाते हैं, कृष्ण की भावना को जगाते हैं, उनको श्री कृष्ण चैतन्य कहा गया है। तो इसी कारण से कृष्ण की भावना को जगाने की अलग अलग विधि है। हाँ, रूप गोस्वामी 64 अलग अलग विधि बताते हैं कि ये करने से आपके हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण के लिए प्रीति का उदय होगा। लेकिन रूप गोस्वामी 5 प्रमुख चीजें बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल इन 5 चीजों को करता है या 5ों में से एक को भी करता है तो उसके हृदय में निश्चित रूप से कृष्ण के लिए प्रेम या सेवा की भावना का उदय हो जाएगा और वो निश्चित रूप से कृष्ण का प्रिय बन जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि सबसे पहली चीज है कृष्ण के प्रति अपनी चेतना या भावना को उदय करने की, वो है साधु संग। क्या है? साधु संग। और दूसरी चीज है नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा जोर से, हरे राम 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 हरे। और तीसरी चीज है भागवत का श्रवण करना। भागवत क्या है? 2 चीजें हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जिसको भी मिलते हो उसे कृष्ण का उपदेश प्रदान करो। तो कृष्ण का उपदेश 2 चीजों में छुपा हुआ है। एक कृष्ण का उपदेश जो उन्होंने स्वयं अर्जुन को दिया वो भगवत गीता है, और दूसरा कृष्ण का उपदेश जो उनके भक्तों के बीच में उनका जो आदान प्रदान है प्रेम का, वो श्रीमद् भागवतम है। तो जो भगवान के बारे में है, तो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है, और चौथी चीज है मथुरावास। मथुरावास का मतलब है भगवान के धाम में निवास करना। और पांचवी चीज है श्री मूर्ति र श्रद्धाय सेवन, कि बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान के जो अर्चा विग्रह है उनकी सेवा करना। तो कोई व्यक्ति इन पांचों में से किसी भी एक को करता है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्ण का प्रिय हो जाता है, या उसके हृदय में कृष्ण सेवा की जो सुप्त भावना है वो उदित हो जाती है। तो इसलिए इन पांचों में भगवान के नाम का जो संकीर्तन है और भगवान के भक्तों का जो संग है वो सर्वोपरि है। क्योंकि भक्तों के संग में हम आते हैं तो सारी चीजें हैं, ये पांचों चारों चीजें हमसे होने लगती हैं। भक्तों के संग में आने से हम हरिराम का कीर्तन करते हैं, भक्तों के संग में आने से श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, भक्तों के संग में आने से हम मथुरा में वास करते हैं, भक्तों के संग में आने से विग्रह की आराधना करते हैं। तो हमारे लिए भगवान के भक्तों का जो संग है वो सर्वोपरि है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षित महाराज के जीवन का जो अंतिम समय आया था, अंतिम समय क्या था, उनको पता चला कि मेरी तो मृत्यु एक उड़ने वाले जिसको पंख है ऐसे तक्षक सर्प के द्वारा सातवें दिन में होने वाली है, तो वो कुछ और उपाय उन्होंने नहीं ढूंढा। ऐसे परीक्षित महाराज अपने सारे भौतिक ऐश्वर्य सारे संबंधों को छोड़कर गंगा नदी के तट पर जाते हैं, और वहां भगवान की कृपा से शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है, हाँ, जो व्यास देव के पुत्र हैं। और शुकदेव गोस्वामी जब बैठते हैं तो राजा परीक्षित उनके सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और शुकदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं। वो कहते हैं अथा पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमानस्य सर्वदा। हे योगियों में सर्वश्रेष्ठ गुरु शुकदेव गोस्वामी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। तो शुकदेव गोस्वामी ने पूछा, हे राजा परीक्षित क्या प्रश्न है? तो शुकदेव गोस्वामी ने जैसे पूछा परीक्षित महाराज उत्साहित हो गए अपने प्रश्नों को पुनः बताने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने कहा, मेरा प्रश्न तो यही है कि जो पुरुष मृत्यु की कगार में खड़ा है, जिसकी मृत्यु अभी होने वाली है कुछ दिनों में, अभी वो मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए आप मेरे लिए बताओ, क्योंकि मैं अभी क्या होने वाला हूं, मरने वाला हूं। हम यहां बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि मैं मरने वाला हूं। किसे लगता है? हमें लगता है कि मेरा पास में जो बैठा है वो मरने वाला है, हाँ, मेरा पड़ोसी मरने वाला है, वहां इराक ईरान के लोग मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं मेरी माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, परमानेंटली शाश्वत रूप से करोड़ों साल के लिए जीवित रहने के लिए। तो ये हमारा भ्रम है, इल्यूजन है। लेकिन यार राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी के चरणों में गिरकर इतना अति उत्तम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमें प्रश्न पूछना भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जिन प्रश्नों से हमें भी लाभ हो और साथ ही साथ दूसरों का भी लाभ हो। तो उन्होंने जैसे पूछा ये पहला प्रश्न, और दूसरी चीज उन्होंने पूछी कि ऐसे मरने वाले व्यक्ति को किसकी पूजा करनी चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, और किसका स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए। तो शुकदेव को समय कहते, परीक्षित तुम तो सबसे अधिक बुद्धिमान हो, ऐसा प्रश्न संसार में आज तक किसी ने नहीं पूछा। 18 पुराण भी आप खोलोगे, वेद उपनिषद तंत्र संहिता स्मृति शास्त्र, जो ये सारे ग्रंथों को आप खोलोगे तो उनमें ऐसा सर्वोच्च प्रश्न कहा भी हमें पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलता जो किसने पूछा था, शुभ परीक्षित महाराज ने। इसलिए उन्होंने कहा कि आपका जो प्रश्न है सारे जगत का मंगल करने वाला है, तो शुकदेव गोस्वामी एक ही श्लोक में उनको उत्तर देते हैं। वो कहते तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्मरण। वो कहते हैं कि जो हे राजा परीक्षित, जो भगवान ईश्वरो हरि जो कृष्ण है वही क्या है, जिन श्रवण करने योग्य है, सेवा करने योग्य है, भजन करने योग्य है, पूजन करने योग्य है। तो फिर परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। और भागवतम क्या है, कृष्ण लीला है। क्या है, कृष्ण लीला। भगवान आने के कई कारण हो सकते हैं। गीता में कृष्ण तो बहिरंग कारण बताते हैं। जैसे बहिरंग का मतलब होता है ना कि जैसे हम किसी को कुछ पूछो तो उसकी मन में कुछ बात होती है, हृदय में कुछ होती है, मन की कुछ बात होती है, लेकिन जिम में कुछ और बात बोलता है, वो अपने हृदय की बात नहीं बोलता। लेकिन सबसे जो किसी से प्रेम करता है तो उसको कहता है कि मैं अभी मेरे मन की बात बोल रहा हूं। तो उसी प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं कि मैं आता हूं जब धर्म का नाश होता है और अधर्म प्रबल होता है, तो उसकी स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। ये बाहरी चीज भगवान ने बोली, लेकिन भागवतम में भगवान अपना हृदय खोलते हैं कि मैं आता क्यों हूं इस संसार में। भगवान कहते कि मैं इस जगत में आता हूं केवल 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 अपने भक्तों को सर्वोच्च आनंद प्रदान करने के लिए। क्यों आता हूं मैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस जगत में प्रकट होता हूं। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण के अलग अलग भागवतम में 20-25 अवतारों का वर्णन है, उन सब के बारे में सुना, भगवान राम के बारे में सुना। और उसके बाद परीक्षित महाराज ने फिर से प्रश्न पूछा कि आपने मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई, इस अवतार के बारे में बताया, उस अवतार के बारे में बताया, इस राजा के बारे में बोला, सबके बारे में बोला, लेकिन शुकदेव को समय में थोड़ा सा रुकी है, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और वो है कि मैं अभी बस केवल 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 कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। किसके बारे में, हाँ। पांचवा दिन जब बीता, परीक्षित महाराज सुनते जा रहे थे, तो पांचवे दिन परीक्षित महाराज ने कहा कि जो प्रेम के विषय है इस संसार में, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, प्रेम के विषय कौन है, तो वो कौन है, कृष्ण है। इसलिए ऐसे जो कृष्ण है उनके बारे में मैं बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूं। अपने बाकी अवतारों के बारे में बड़ा शॉर्टकट मारते हुए आगे चले गए, लेकिन मुझे कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा है। और उनका विशद वर्णन कीजिए, क्यों, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान है। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित, देखो 5 दिन बीते हैं और ऐसे नहीं कि ये दोनों जब गंगा के तट पर बैठे थे, दोनों ना खाने के लिए उठे ना सोने के लिए उठे, उनकी ये जो भागवत कथा कैसे हो रही थी, 24 आवर्स, 24 घंटे श्रीमद् भागवतम कथा हो रही थी। शुकदेव गोस्वामी बोलने के लिए नहीं थक रहे थे और परीक्षित महाराज सुनने के लिए भी थके नहीं थे। तो परीक्षित महाराज को चेक करने के लिए कि इनका कितना कृष्ण कथा सुनने के लिए रुचि है, श्रद्धा है, सेवा की भावना है, क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनना यह सर्वोत्कृष्ट सेवा है। तो उन्होंने चेक करने के लिए शुकदेव गोस्वामी ने पूछा कि अरे परीक्षित, अभी भूख वगैरह लगी होगी, जाओ प्रसाद खाकर आओ, आप प्रसाद का टाइम हो गया है, हम क्लास शुरू होने से पहले प्रसाद का हमारे टाइम हमारे इसमें ना फिक्स रहता है, घंटी पहले से यहाँ बजने लगती है, वहाँ आल्टर में घंटी बाद में बजती होगा। तो वहां जब बोला तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आपके मुख से सुनते हुए है, मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास, मैं निरंतर सुनना चाहता हूँ। तो फिर शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, और कृष्ण का जो प्राकट्य है, कृष्ण कैसे इस जगत में अवतरित होते हैं उसके बारे में वो सुनाते हैं। और फिर भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन करना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कृष्ण इस धराधाम में प्रकट हुए हैं, वसुदेव और देवकी को आनंद देने के लिए आए कारागृह में, और फिर वसुदेव उनको ले जाते हैं गोकुल वृंदावन महावन में, जहां नंद महाराज और यशोदा निवास कर रहे थे। तो यशोदा माता तो वहां सो रही थी, उसी समय हम उस बालक को वहां रख के आ जाते हैं वसुदेव, और फिर वहां से जो बालिका है उसको लेके आते हैं। वो सारी चीजें आपने पिछले सैटरडे सुनी होगी। और फिर उस बालिका को लाते हैं तो कंस आता है, नया जो बालक जन्म लिया है उनको मारने के लिए। तो जो यशोदा देवकी है वो रोने लगती है, वो कहते हैं कि आपका जो वध है कंस, आप मेरे आठवें पुत्र के द्वारा होने वाला था, लेकिन अभी मुझे तो ये पुत्री बालिका ने जन्म लिया है, इससे तो आपको कुछ भय नहीं है। तो लेकिन वो इतना अधिक क्रूर था, आप देख सकते हैं कि हम अपने शरीर को या अपने आप को बचाने के लिए किसी भी की भी हत्या करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, कितना से कितना घृणित कार्य करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो कंस उस बालिका को उठाता है और जेल में ही उसको मारने के लिए अपने हाथ में लेता है। उसी क्षण वो भगवान की योग माया शक्ति है, वो उनके हाथ से छुटकर आकाश में जाती है और 10 भुजाएं धारण करती है, और वो कहते कि अरे मूर्ख, तुम्हारा तुम्हें मारने के लिए है, तुम्हारा जो काल है वो पहले से ही प्रकट हो गया है। तो कंस का और भय बलवान हो गया। तो कंस ने एक जो आसुरनी है या राक्षसी है जिनका नाम पूतना है, तो हम आज पूतना के बारे में चर्चा करने वाले हैं थोड़े समय के लिए। तो जो पूतना एक विशेष राक्षसी है जिनसे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बल्कि कंस ने देखा कि अभी अभी सारे उस एरिया में कई सारे बालकों ने जन्म लिया है और उनका जो शत्रु है उनका भी उनको विनाश करना था, इसलिए उन्होंने जो बालकों को मारने में जो एक्सपर्ट है ऐसे पूतना को बुलाया। पूतना का काम था, पूतना का एक नाम है खेचरी। खे का मतलब होता है आकाश और चरी का मतलब विचरण करना। तो जो आकाश में उड़कर विचरण करती है और जो छोटे छोटे बालक जिन्होंने जन्म लिया है उनको खाती है, उनको मारती है, उनको उनका ब्लड पीती है। तो ऐसे पूतना को बुलाया और उसे ये मिशन दिया कि जाओ सारे बालकों का वध करो। तो उसी समय वो जो पूतना वृंदावन के महावन या गोकुल में जाती है, और कृष्णा 6 दिन के थे। कितने दिन के थे कृष्णा? 6 ही दिन के थे। तो भगवान कृष्णा 6 दिन के हुए थे और नंद महाराज और यशोदा को बहुत साल के बाद लगभग वो बूढ़े हो गए थे तब इन बालक की प्राप्ति हुई थी कृष्ण, और वो बहुत अधिक आनंदित थे। तो जब ये पूतना ढूंढते हुए बालकों को ढूंढते हुए वहां गए, उसको पता चला कि नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर में आनंद ने जन्म लिया है या कृष्ण ने जन्म लिया है, तो वो गई उनको मारने के लिए गई। तो जब वो गई तो उसने देखा कि मेरा ये जो भयावह रूप है ये तो बहुत अधिक विकराल है, इसको देखते ही ब्रजवासी भाग सकते हैं और मुझे अपने घर में प्रवेश करने नहीं देंगे। तो उस समय वो जो पूतना है वो अपना रूप बदलती है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतना सुंदर उसने रूप धारण किया था कि जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके सामने उनकी तुलना करना असंभव है। एक लक्ष्मी के समान सुंदर वो पूतना बने और अपने हाथ में कमल का फूल लेकर चलने लगे गोकुल के उस गांव के बीच में। तो जब ये पूतना चल रही थी लक्ष्मी के सुंदर रूप में हाथ में कमल लेकर, तो सारे ब्रजवासी उसको देखने के लिए रोड पर आ गए कि हमारे गांव में सौंदर्यवती कहां से आ गई जो इतनी अधिक रूपवान है, सुंदर है। तो सारे ब्रजवासी बाहर आते हैं उस श्री को देखने के लिए, और वो सीधा चलते चलते नंद महाराज के भवन के सामने जाती है। नंद महाराज के भवन के आंगन के बाहर रोहिणी और यशोदा माता खड़ी थी, और वो हमेशा सोचती थी कि मुझे बहुत सालों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो सारी स्त्रियां आए और उनको आशीर्वाद दें ताकि उसको उसकी लंबी आयु हो। तो ऐसे जब चर्चा कर ही रही थी यशोदा और रोहिणी, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो पहली बार हम इस स्त्री को देख रहे हैं गोकुल में, और जो लक्ष्मी के समान सुंदर है, हाथ में कमल उसने पकड़ा हुआ है। तो ऐसा देखकर यशोदा माता कहती है कि शायद नारायण की भारिया लक्ष्मी मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आई है, चलो चलो इसको जाने दो अंदर। तो फिर ये जो पोतरा है वो अंदर प्रवेश करती है नंद के भवन में, और जैसे ही वो प्रवेश करती है और सीधा दूर से ही वो कृष्ण को देखने लगती है, कृष्ण को देखती है, और कृष्ण भी उस पुतना आसुरिणी को बहुत लंबे समय से देखते रहते हैं। तो भगवान तो यहाँ अवतरित हुए थे आसुरों का वध करने के लिए या पृथ्वी माता की प्रार्थना को रिस्पॉन्ड करने के लिए, पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए। तो जैसे भगवान ने देखा कि मैं तो पृथ्वी का भार कम करने के लिए आया हूँ, आसुरों का वध करने के लिए आया हूँ, तो भगवान ने पुतना को दूर से देखते ही क्या कर दिया, अपनी आंखों को बंद कर दिया और अपने हाथ की जो मुट्ठी है उसको भी बंद कर दिया, और दूर से ही पुतना कृष्ण को देखा उन्होंने, उन्होंने उनको लगा कि ये तो क्या है, आग है जो राख से ढकी हुई है, तो वो देखकर एक बार चकित हो जाती है। तो आचार्यगण कहते हैं कि कई सारे कारण हैं कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एक कारण तो ये था कि भगवान ने सोचा कि ये मुझे किसी को पहली बार मारना है, तो एक स्त्री को मारना पड़ रहा है, इसलिए भगवान ने सोचा कि स्त्री वृद्ध बालक इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और मुझे कोई लीला करनी पड़ रही है तो एक स्त्री का वध करना पड़ रहा है जो शास्त्रों के विरोध है। इसी कारण से भगवान ने अपनी आंखें बंद की, और एक आचार्य कहते कि जैसे बच्चों को कड़वी दवा पिलाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, करते कि नहीं, तो वैसे ही ये जो पूतना है कड़वी है, और ये पूतना को देखकर भगवान अपनी आंखें बंद करते हैं। लेकिन एक चीज पूतना में बहुत अच्छी थी, वो क्या थी, वो भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी। क्या करने के लिए आई थी, स्तनपान करने के लिए आई थी, मतलब वो अपना संबंध भगवान कृष्ण के साथ स्थापित करने के लिए आई थी। किस चीज के लिए आई थी, अपना जो संबंध है भगवान के साथ स्थापित करने के लिए आई थी। हम भी मंदिर आते हैं, क्यों मंदिर आते हैं, अपना जो संबंध है भगवान के साथ स्थापित करने के लिए आते हैं। और संबंध कैसे स्थापित होता है या संबंध कैसे प्रगाढ़ होता है, जब आप क्या करते हो, लेन देन करते हो, क्या करते हो, लेन देन, ददाति प्रतिगृहणाति, छह चीजों से संबंध प्रगाढ़ होता है। कुछ आप देते हो, कुछ आप लेते हो, कुछ आप मन की बात बोलते हो, कुछ आप मन की बात दूसरों से सुनते हो, कुछ आप उनको खिलाते हो, कुछ उनसे आप खाते हो। ये छह चीजें करने से आपका जो संबंध है भगवान के साथ या भक्तों के साथ प्रगाढ़ होता है। तो ये पूतना भी आई थी अपने स्तन को बहुत भयावह विष का लेप करके, और वो विष का लेप करके आई और उसने सोचा कि कृष्ण को मैं दूध पिलाने का बहाना बनाकर विष पान कराऊंगी, और जिससे ये बालक पिएगा तो वो उसकी मृत्यु सरलता से हो सकती है। तो भगवान तो वो जानते थे, बल्कि ऐसे जब पूतना इस भावना से आई तो भगवान ने उसको सोचा बहुत अच्छा है, मुझे कुछ ऑफरिंग लेके आई है, खाली हाथ मंदिर नहीं आई। कैसे आई थी वो, कुछ ऑफरिंग लेके आई थी कि चलो खाली हाथ भगवान से मिलने कैसे जाओ, ऑफरिंग लेके जाती हूँ, और वो दूध लेके आई थी, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग था, किस चीज का, जहर का। तो जब वो आई तो उसने कृष्ण को उठाया, कृष्ण ने तो आंखें बंद की थी, कृष्ण को उठाया और अपने जो स्तन है भगवान कृष्ण के मुंह में दिया और जैसे उन्होंने स्तन पान करना शुरू किया कृष्ण ने, भगवान उसका दूध पीते पीते क्या पी लिया, भगवान ने उसका प्राण भी पीने लगे भगवान, और भगवान प्राण पीने लगे उस पूतना का, तो पूतना चिल्लाने लगे और बहुत भय से विवल हो गई और उस महल से दौड़ने लगी बाहर। तब तक भगवान कृष्ण ने उनके स्तन को नहीं छोड़ा जब तक वो गोकुल के बाहर ना जाए। जैसे भगवान उसके प्राण को चूसने लगे वैसे ही उसका जो मूल रूप है वो प्रकट होने लगा। इतना भयावह विशाल वर्णन आता है कि भागवत में केवल दो ही लोगों का बहुत शारीरिक जो शरीर का बहुत डिटेल वर्णन किसका मिलता है, तो वो दोनों का ही मिलता है। एक है राधा कृष्ण के दिव्य शरीर का बहुत डिटेल वर्णन भागवतम में है, हर एक अंग का वर्णन है, भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान के होंठ कैसे हैं, भगवान की दंत पंक्तियां कैसी हैं, भगवान की उंगलियां कैसी हैं, हर चीज का बहुत डिटेल है। और दूसरा किसका वर्णन बहुत डिटेल किया है अंगों का, तो वो कौन है, पूतना। पूतना के हर एक अंग का बड़ा विस्तार से वर्णन दिया है। तो जैसे वो बाहर दौड़ते हुए गई और अपना जो ओरिजिनल बड़ा रूप प्रकट किया और वो बाहर जाकर गिर पड़ती है और उसका मृत्यु हो जाता है। बल्कि भगवान जब पी रहे थे उसके स्तन से दूध तो वो चाहते थे कि उसको फेंको, लेकिन भगवान पीते जा रहे थे। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान सोच रहे थे, भगवान अभी कह नहीं पा रहे थे उसे कि अभी तो तुमने भोग लगाया और अभी तुरंत ही मुझे हटा रहे हो, थोड़ा सा वेट करो, क्या करो, वेट करो, हम 15 मिनट तो रुकते हैं ना भोग लगने के बाद, 10 मिनट रुकते हैं। तो भगवान कह रहे थे अभी अभी मैंने अपने भोगा ऑफरिंग किया है और अब तुरंत मुझे भगा रही हो, मुझे आराम से इन चीजों को ग्रहण करने दो। तो भगवान उसके प्राण को भी चूस लेते हैं और वो जो पूतना है वो गिर पड़ती है और यशोदा माता, ब्रजवासी, रोहिणी आदि वो सब लोग भयभीत हो जाते हैं और वो देखने लगते कि कृष्ण कहाँ है। तो कृष्ण ये जो पूतना है उसका जो विशाल देह था उसके ऊपर आराम से खेल रहे हैं। अभी उसके शरीर इतना ऊंचा था, ऐसा वर्णन आता है कि बहुत बड़े पहाड़ के समान उसका शरीर था, उसकी जांघें एक नदी के तट के समान थी, उसकी नथने कंदराओं के समान थी। ऐसे हर एक अंग का बड़ा विशाल वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। तो गोपियों ने सोचा इस शरीर के ऊपर कृष्ण को लाने के लिए कैसे करें, तो सारी गोपियां सीढ़ी लेके आती हैं, लंबा सा सीढ़ी, जितना भी लंबा सीढ़ी ब्रज में था वो सीढ़ी लाते और चढ़ती है गोपियां और जाकर कृष्ण को उठा के ले आती है। और कृष्ण को लाती है तो कृष्ण जैसे पहले थे वैसे ही खेल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो लाकर वो सोचती है कि ये बहुत अशुभ है, तो कृष्ण को भगवान जो गाय है उनका गोमूत्र गोबर आदि से अभिषेक कराती है, गोधूलि से लेपन करती है, इतनी सारी चीजें कृष्ण के शरीर में, गौओं की चरण धूलि, गौओं का गोबर, गौओं का गोमूत्र लगाया गया। तो उसी समय इस पूतना के लीला के समय कृष्ण ने मन में एक वचन लिया, कृष्ण ने सोचा कि आप हे काउस, हे गायो, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी सेवा करूंगा और मैं नाम अपना बनाऊंगा। क्या नाम बनाऊंगा, गोपाल। क्या नाम होगा भगवान का, जोर से बोलिए गोपाल। इस प्रकार से इस पूतना लीला के समय है कृष्ण ये वचन लेते हैं कि मैं बड़ा होकर गौओं की सेवा करूंगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में ये जो पूतना की लीला है जिसका बहुत विशाल या बहुत डिटेल वर्णन आता है और सारे ब्रजवासी, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्पर्श पूतना के शरीर को हुआ था जिसके कारण पूतना आसुरिणी का जो शरीर का जो सुगंध है वो चंदन के समान आने लगी। जब उनके शरीर को जलाया गया अलग अलग अंगों को काट कर ब्रजवासियों के द्वारा, तो इस प्रकार से भगवान कृष्णा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक पूतना आती है, बल्कि अपने मन में भगवत सेवा करने की भावना नहीं थी, भगवान को मारने की भावना थी, लेकिन भगवान की इतनी अधिक उदारता है, भगवान इतने अधिक दयालु हैं कि उसको भी अपने धाम गोलोक वृंदावन में यशोदा माता का स्थान देते हैं। पूतना विष पिला रही है, लेकिन गोलोक वृंदावन में पूतना को कौन सा स्थान दिया भगवान ने? यशोदा माता, अपनी माँ का स्थान दिया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कहता है, कम्वा दयालु शरणम प्रपद्ये। जब ये शुकदेव गोस्वामी अपने माँ के गर्भ में थे और वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, 16 साल के हुए, माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो जो व्यासदेव थे, व्यासदेव ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ, तो बेटा कहते हैं बाहर ना माया है, माया के प्रभाव से मुझे भगवत स्मरण नहीं होगा, मैं बाहर नहीं आ सकता। तो व्यासदेव पूछते, मैं गारंटी देता हूँ कि माया तुम्हें आत्मस्थ नहीं करेगी, कहते तुम भी तो माया में हो, मैं बाहर नहीं आएगा। ऐसा कोई है जो माया का आदेश है या माया का कंट्रोलर है? तो व्यासदेव ने कहा, अभी द्वारका में कृष्ण है, द्वारकाधीश है, वो माया के कंट्रोलर है। तो कृष्ण को बुलाया अपने घर में, कृष्ण ने कहा शुक्रदेव बाहर आ जाओ, माया से तुम प्रभावित नहीं होगे। तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ से जैसे बाहर आते हैं वैसे दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ कर जंगल में चले जाते हैं, और व्यासदेव बेटा बेटा कहकर उनके पीछे भागते हैं कि बेटा घर में आ जाओ, बेटा घर में आ जाओ। तो लेकिन बेटा भाग रहा है, जंगल में चले गए, और भगवान के निराकार रूप के प्रति वो आकर्षण थे, निराकार भावना के प्रति। तो ऐसे व्यास देव ने सोचा बेटे को वापस कैसे लाया जाए घर। तो उन्होंने अपने शिष्यों को दो श्लोक सुनाए भागवतम के। एक श्लोक तो यही था जिसमें ये वर्णन था कि इस संसार में कृष्ण से अधिक दयालु कौन हो सकता है, जिनको विषपान करने के लिए पूतना गई उसकी सेवा को स्वीकार करके भगवान ने माता का स्थान प्रदान किया। जब इस पूतना के बारे में शुकदेव गोस्वामी ने सुना और कृष्ण की सुंदरता के बारे में सुना, तो ये दो गुणों को सुना, कृष्ण के कितने गुणों को सुना उन्होंने? दो गुण, एक तो कृष्ण की दया और कृष्ण का सौंदर्य। तो ये दो क्वालिटीज को इतना अधिक सुना कि शुकदेव गोस्वामी जंगल छोड़कर व्यासदेव के पास आते हैं, और वो कहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इतना अधिक दयालु है, इतना अधिक सौंदर्यवान है, मैं उसके बारे में और अधिक सुनना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में और अधिक डिटेल में जानना चाहता हूँ। तब व्यासदेव ने अपने बेटे शुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम की शिक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार से भगवान इस पूतना को भी स्थान प्रदान करते हैं। तो ये जब पूतना की लीला हो रही थी, तब जब ब्रह्मा है वो बादल के पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि नीचे क्या हो रहा है। तो जब ये पूतना का लीला हुई, पूतना का उद्धार हुआ, उसको माता का स्थान दिया, और उसके बाद जो बकासुर है, बकासुर की बहन कौन है? बकी। पूतना का दूसरा नाम क्या है? बकी। तो ये बकासुर का भी भगवान ने उद्धार किया, अघासुर का भी उद्धार किया। तो ये जो ब्रह्मा है उसके कितने सर हैं? चार। तो पहले देखा कि पूतना का उद्धार किया, विष पिलाने आई उसको माँ बना दिया, तो उनका एक सर बिल्कुल ऐसे सर दर्द होने लगा। फिर देखा कि बकासुर का भी उद्धार हो गया, ब्रह्मा का दूसरा सर फटने लगा, सर दर्द बढ़ने लगा। फिर तीसरा असुर देखा कि अघासुर का भी वध किया और उनको भी भगवान ने अपने धाम में स्थान दिया, तो भी उनका सर दर्द होने लगा, अभी एक सर बचा था जिसमें दर्द नहीं था। तो ब्रह्मा ने सोचा कि अभी मैं खुद जाके देखता हूँ ये बालक है कैसा। तो जब वो आते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, और भगवान के बछड़े और उनके जो संगी हैं ग्वाल बाल उनको चुराते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को समझना चार सर वाले ब्रह्मा के लिए भी कठिन है। क्या है? ब्रह्मा के लिए भी। तो फिर आप सोचो हमारे पास क्या है? एक ही सर है, वो भी इतना, कितने ग्राम का दिमाग होता है, बहुत छोटा, वो क्या समझ सकता है? भगवान महान है और हम, हाँ भगवान विभू है और हम अनु हैं, लेकिन एक चीज से भगवान को हम समझ सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी भगवान की सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाए। तो मतलब इस प्रकार से हम भगवत भक्ति करें, इस प्रकार से अपने हृदय को तैयार करें, कृष्ण आकर हमारे हृदय में निवास करना चाहे, तो इस प्रकार की भावना हमें स्वीकार करनी चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण से अधिक इस संसार में कोई भी अधिक दयालु नहीं है। मतलब आप सोचो इस पूतना लीला से कि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट हाउस पर बॉम्ब डाल रहा है और जब जब उसको पकड़ा जाता है उस व्यक्ति को, और न्यायाधीश जो जज है वो अपना निकाल सुनाता है कि अच्छा हुआ बहुत सारे जो सांसद या नेता है वो अच्छा कि आपने बॉम्ब डाला, उनको मारने के लिए आपको अभी राष्ट्रपति बना देते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, वो मारने के लिए आई और उनको मां बना दिया। तो इसलिए भगवान को हमें स्वीकारना है तो उनके जो भक्त है, आचार्य है, उनके माध्यम से हमें स्वीकारना होगा, समझना होगा शास्त्रों के द्वारा। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के जो भक्त है जैसे श्रील प्रभुपाद आदि, उनके शब्द में हमें क्या करना होगा? विश्वास करना पड़ेगा। भक्ति के लिए भक्तों के शब्दों में फेथ डेवलप करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बार एक स्त्री थी, वो मार्केट में गई, परचेजिंग के लिए गई, शॉपिंग के लिए गई, तो उसने अपने बच्चे को उठाया और पीछे लटकाया। अभी आजकल और चिल्ड्रन टैग्स भी आए हैं ना, पहले तो माताएं यहाँ रखते थे, उसे प्रेम, अभी प्रेम वगैरह नहीं रहा, या तो गाड़ी में बिठाओ ठेले में, या फिर क्या करो पीछे जैसे बोरी डालता है। चावड़ी बाजार में आप जाओगे तो शुगर और इन सब की बोरी वो जो क्या कहते हैं कुली उठाता है, पीठ पे डालता है, वैसे बच्चों को कहाँ डालते हैं अभी? पीठ पर। पहले क्या था प्रेम, ऐसे देखा नहीं गया कि यशोदा ने कृष्ण को पीठ पे डाला। तो यहाँ ये शॉपिंग के लिए गई और इसने बच्चे को पीछे डाल दिया और शॉपिंग में इतनी मग्न हो गई, इतनी मग्न हो गई, थोड़ी देर के बाद वो पूछने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। क्या पूछने लगी? मेरा बच्चा कहाँ है? तो वो एक शॉपकीपर के पास जाती कि मैं अभी आधा घंटे पहले आपके शॉप में आई थी, मेरे बच्चे को देखा है क्या? वो शॉपकीपर हंसने लगा, उसको लगा मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो दूसरे शॉपकीपर के पास गई, वो भी हंसने लगा। ऐसे 7-8 शॉपकीपर्स के पास गए, दुकान वालों के पास, और वो सब हंसते जा रहे थे। उसने सोचा इन लोगों से बात करना उचित नहीं है, तो उसको एक साधु नजर आए, एक डिवोटी, वो जा रहे होंगे जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक साधु जप करते हुए जा रहे थे, तो उनको उन्होंने पूछा कि मेरे बालक को आपने देखा है क्या? तो उन्होंने कहा आपका बालक आपको मिलेगा जब आप नजदीक ही एक जलाशय है, सरोवर है पानी का, उसके किनारे जाकर खड़े रह जाओ और थोड़ा नीचे झुको। तो उसने सोचा चलो बाकी लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये साधु बोल रहा है मैं फॉलो करके देखती हूँ। तो ये गई और जैसे ही पानी के पास गई और नीचे झुका, तो उसको दूसरा भी चेहरा नजर आया। क्या हो गया उसको? दूसरा भी चेहरा नजर आया जो हंस रहा था। वो कौन था? उसका बालक पीछे लटका हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम भी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और कृष्ण बहुत नजदीक है हमारे, कितने नजदीक है? कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, हाँ रुद देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं हृदय रूपी देश में निवास कर रहा हूं, हृदय में निवास कर रहे हैं। कृष्ण इतने नजदीक है, जैसे वो लेडी के, वो जो स्त्री के पीछे बच्चा था उसको
समझ में नहीं आ रहा था, वो ढूंढते जा रहे थे, लेकिन उसने जैसे विश्वास किया और वो गई जलाशय के पास, उसे अपने आप को भी उसने देखा और उस बच्चे को भी देखा। तो उसी प्रकार से हम भी जब गुरु साधु शास्त्र के शब्दों पर हम विश्वास करते हैं, फेथ के साथ फॉलो करते हैं, तो हम अपना भी साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात्कार, और साथ ही साथ हमें भगवत साक्षात्कार होता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो कृष्ण लीला है जिसका श्रवण करने के लिए राजा परीक्षित शुक्रदेव गोस्वामी के पास बैठे थे, और ऐसी कृष्ण लीला श्रीमद् भागवतम में भरी पड़ी है, और श्रील प्रभुपाद ने भागवतम से पहले ही हमें कृष्ण बुक दी है, इसमें खजाना है। प्रभुपाद कहा करते थे कि हर एक भक्तों को अपने जीवन में कृष्ण को लाना है तो उसे रोज ये कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए, कृष्ण की लीलाओं को पढ़ो और अपने हृदय में रखो कृष्ण लीला को, और आप देखोगे कितना अधिक आनंद आप अनुभव करते हो। प्रभुपाद ने कहा सोने से पहले कृष्ण के बारे में पढ़ोगे तो पूरी रात आपकी कृष्ण भावना में हो सकती है। हाँ, तो इसलिए ये सरल उत्तम उपाय है जन्माष्टमी को स्वीकार करने का या रिसीव करने का, कि हम कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक सुने और विशेष रूप से कृष्ण की लीला को सुने, और उस लीला से हमें क्या सीखने को मिलता है वो भी श्रील प्रभुपाद के इस ग्रंथ से हमें समझ में आता है। तो आज हमने यही चर्चा की है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं, और हमारे जीवन का सर्वोच्च ध्येय है कृष्ण को अपने जीवन में रिसीव करना। और जन्माष्टमी की तैयारी का मतलब है बाहरी तैयारी है, कई सारी बाहरी एक्टिविटीज करना, और आंतरिक तैयारी है अपने हृदय को तैयार करना कृष्ण के नाम रूप में लीलाओं को सुनकर। और जो पुतना की जो लीला है जिसको हमने संक्षेप में सुना कि किस प्रकार से पुतना अप्रोच करती है और भगवान उसकी उस सेवा को भी स्वीकार करते हैं और उसको माता का स्थान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण से अधिक दया दयालु इस संसार में कोई और नहीं है, तो ऐसे परम भगवान कृष्ण की हमें आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और आश्रय ग्रहण करने का सरलतम उपाय है उनके नामों का उच्चारण भक्तों के संग में करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद के निदाय गौर प्रेमानंदे।